हमने ये शरीर को ही मान रखा है कि मैं हूं, और इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने कुछ विशेष कारण से दिया, इसलिए हम लोगों को किसमें हित है किसमें अहित है वो सभी लोग इसी में व्यस्त है, इसलिए सभी बालक ही है, कुछ भी ज्ञान नहीं। हम इतना जो कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं भोगों के संग्रह के लिए, आखिर हमारे सुख में ये काम आएगा कि नहीं, या इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा? आखिर लाख की चेष्टा करो, विश्व भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी मिल जाए और सारा वैभव उसमें खर्च किया जाए अर्थ भी, तभी बुढ़ापा आने से इसे कोई नहीं रोक सकता। जो चीजें सड़गल जाती हैं, फल फूल अन्न, अन्न बनाओ दूसरे दिन वो सड़ जाता है, फल रखो तीसरे दिन चौथे दिन वो भी सड़ जाएगा, ऐसे चीजों से बनने वाले शरीर भी वो सड़ा हुआ है। जहां आत्मा निकली उसे कोई रोक नहीं सकता, किंतु फिर भी मनुष्य अपने सुख के लिए कुछ नहीं करता। अपने मैंने मैं मैंने आत्मा आत्मा यही शरीर उसके लिए कुछ नहीं करता, तो सब हम बालक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बाल टोली में अबोध बालों को की टोली में वो कब प्रकट होकर के फिर जैसे अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया सारे विश्व को ज्ञान दिया, वो कब हमको ज्ञान देंगे? उनके बिना ज्ञान के कोई भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, उन्हीं की कृपा से। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बाल टोली में आ जाइए। बोलिए रहा है कृष्णा वृंदावन से मथुरा में आए, कौबल्यापुर का वध किया, चारण मुष्टिक का वध किया, उसके बाद में कंस का वध किया। कंस माने होता है पाप, पाप का वध किया। अभी बच्चे ने कीर्तन किया कि हमारे साथ में गोचर आ जाइए, माने क्या? अबोध टोली में गो माने इंद्रिय, गो माने बुद्धि, गो माने वेद, गो माने गाय। ये गाय क्या है? वेदों की एक एक ऋचा के ये अवतार हैं, इसलिए कैसे हम लोग सुखी हो सकते हैं उन गायों की वेद की ऋचाओं को ये पालन कर रहे हैं, उसका पालन करने से हम सुखी हो सकते हैं जीवन में। इसलिए गयों को चारा कर बहुत शिक्षाएं इसमें भरी पड़ी। तो कृष्ण कंस का वध किया, कंस के वध करने पर ऊपर में बहुत ऊंचा आसन था, यही कंस्टिल्ला खूब लगा हुआ, ऐसा जैसे कोई सुनाई नहीं पड़े। वो तो ऊंचा आसन पर बैठा था और उसके छत के ऊपर चारों मूड चारण मुस्टिक इत्यादि का वध हुआ। कंस के ऊपर में नीचे से भगवान कूद गए, बहुत ऊंचे आसन और उसकी चोटी पकड़ ली, इसी हाथों से अपने दुष्टों ने मेरी मैया का और अपनी बहन का केस पकड़ा था और वहीं से उसे गिराकर और उसके ऊपर में विश्व ब्रह्मांड का भार दिए कूद गए और कूदते ही वो मर गया। अभी जीवित है मर गया, लोगों को दिखलाने के लिए उन्होंने उसके पैर को पकड़ के थोड़ा सा खींचा। यदि जीवित व्यक्ति रहता खींचने से भी वो पूरा पौधा नहीं वो इधर होगा, अब मर जाने से एक जगह खींचने से सारा बॉडी आ जाएगा, तो खींचा तो वो पूरा मर चुका था, લતાથા મામા मर गया तो कंस की पत्नी आकर के रोने लगे। कृष्ण ने उनको समझाया, उसका दाह संस्कार किया, जिस नाले से उसको पकड़ करके ले गए वो ये अंबा खाट ये सब ऐतिहासिक भी सत्य है, झूठा कुछ नहीं। झूठा रहता था दो एक बात होता, प्रत्येक भूमि प्रत्येक जगह उपजा अपूर्ता स्थान सब स्थान इसकी साक्षी है, जन्मभूमि इसकी साक्षी है। इसलिए ये सारी बातें परम सत्य है। इसके पश्चात में वसुदेव जी और देवकी उनके बंधन खोले, उग्रसेन को भी कैद करके हाथों में हाथ थकड़ी बेड़ी लगाकर वहां पर बैठाया था। सबके सामने ये कृष्ण बलदेव को हम लोग मारे, उनको भी बैठा रखा, यहाँ तक कि नंद जी को भी वहीं पर बैठा रखा। ये दिखलाएगा जो उनके सामने मारेगा उसको आनंद होगा। और ये लोग करते हैं किंतु उसकी एक न चली। उस समय मैं उनके बंधन खोल दिया, अब उग्रसेन का भी बंधन खोल दिया और उनके सामने आए तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए वसुदेव जी और देव। आई थिंक दैट इट विल बी बेटर दैट आफ्टर वर्ड एनी वन कैन एक्सप्लेन, बट आई एम टेलिंग अबाउट हाउ कंस was killed by Krishna or in this place very near. There are so many special truths that it can prove that Krishna killed Kansa here in the Rangeshwar temple nearby. So when he went to Vasudeva and Devaki, Krishna after killing Kansa, he untied their हस्तकड़ी है चेन्स एंड देन यू वॉन्टेड टू स्पीक विथ वसुदेव एंड देवी से बातचीत करना चाहते प्रेम भरी बात, किंतु देखा वो तो हाथ जोड़ करके खड़े हैं तो क्या बात करें। उस समय में हाथ जोड़ करके वो देख रहे हैं कि आप जगत के प्रभु हैं, भूभार हरण करने के लिए आए हैं, यद्यपि हमारे पुत्र के रूप में आए हैं किंतु आप हमारे पुत्र नहीं हैं। आप तो ईश्वर, तो जितने ईश्वर हैं जगत की सृष्टि करने वाले और उसको फिर ध्वंस करने वाले, उन ईश्वरों के ईश्वरों को भी परमेश्वर आप, ये छोटे से बच्चे के लिए आपने कितने हजार 50,000 हाथियों वाले हाथी को कुबल्यापीड़ को देखते देखते में मार डाला, उनके रक्षकों को मार डाला। ये चारों मुष्टिक साधारण नहीं थे, कंस ये साधारण नहीं था, उसको आपने मार डाला। तो आप ईश्वरों के ईश्वर, किंतु प्रभु एक बात है, दो युग किल्ड कंस बट We think that you are handsome gods of God. Supreme personality of God is one. आपके नाम के स्मरण से ही भवबंधन खुल जाता है। भवबंधन माने किसको कहते हैं? पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मरण, अपने कर्म फलों का पात्र होकर के भोग। इसमें मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता, अपने अपने कर्मों का भोग करता हुआ उसको जन्म मरण में जाना पड़ेगा, उसको कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम है भव, पुनः पुनः होना, बोधातु से। इसने जो जन्म लिया वो मरेगा, और जो मरेगा वो भी फिर जन्म जो अवश्यंभावी है, क्योंकि उसने कर्म किए हैं। वैसे उन कर्मों के फेर में इस तरह से 84 लाख की योनियों में वो सदा भटक रहा है, आज तक भटक रहा है, किंतु आज तक उसका उद्धार इस संसार में नहीं हुआ, क्योंकि वैसा कोई काम ही नहीं किया। यदि वो करता, किसी प्रकार से भगवान का स्मरण करता, जैसे आप लोगों को सुजोग है, हम लोगों को सुजोग है, घर बार छोड़ करके हम मथुरा में आए किसलिए? कुछ भगवत स्मरण करने के लिए। यहाँ पर कृष्ण की उद्दीपना कराने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं, मथुरा में उनकी लीलाएं हुई, गोवर्धन नंदगांव इत्यादि में, उस भूमि के स्पर्श से हमारा कल्याण हो जाएगा, इसलिए घर बार छोड़ करके माता पिता छोड़कर। और बाकी जो लोग हैं वो नौकरी के लिए भी आए हैं तो मथुरापुरी में उनको भी साधु संतों का स्पर्श, इस भूमि का स्पर्श किसी न किसी रूप में जरूर होगा। किसी किसी न रूप में उनको इच्छा होगी कि मैं गोवर्धन एक बार परिक्रमा कर रहा हूँ, जरा सुन तो आऊँ जी ये क्या कहते हैं। ठाकुर जी का भोग लगा, उसका भी प्रसाद, कभी ठाकुर जी के दर्शन हो गए। इस भूमि, ये पवित्र भूमि, इसमें स्पर्श होने से भी एक रात निवास यदि कोई श्रद्धापूर्वक करे तो उसको भक्ति हो जाती है। विदेश से भी जितने भी लोग आए हैं, अभी परिक्रमा करने के लिए हजारों लोग आएंगे विदेशों से, उनके भी कुछ सुकृति होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। और वहां पर कह रहे हैं वसुदेव जी कि हमने कौन से पाप किए थे, पाप नहीं करते तो कंस इतना अत्याचार हम पर नहीं करता। हमारे इतने लड़के मारे गए, उनकी तो बात छोड़ो। जब कृष्ण हमारे गर्भ में आए तो उनका स्पर्श तो होगा हमसे, पहले नंद उनके वसुदेव जी के हृदय में आए, फिर उनके हृदय से उनके देवकी के गर्भ में आए, तो उनका भी स्पर्श हुआ, इनका भी स्पर्श हुआ। देवी ने 8 महीने उनको अपने घर में धारण किया, उस प्रभु को, किसको? जिसके नाम श्रवण से, कीर्तन करने से, नाम का चिंतन करने से भवबंधन खुल जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं। तो हमने ऐसे कौन से पाप किए जो हमारे पाप नहीं छूटे? देखो तो प्रभु से वो गाने जा रहे हैं, कृष्ण से हाथ जोड़े हुए, प्रभु हमने कौन से पाप किए कि आपको गर्भ में धारण किया, फिर गर्भ से आप निकले, आपका चतुर्भुज रूप हमने दर्शन किया, आप चतुर्भुज रूप में, और आपसे बातचीत की, आपका चुंबन किया, स्तन भी आपके मुख में दिया, इतना सब हुआ, स्पर्श किया, बातचीत की, सब कुछ की, स्तौर स्तुति आपकी की, आपको दर्शन किया, और हमारे भवबंधन कटे नहीं। ये जगत का जितना दुख हमारे सिर पर रखा, हमारे सामने बच्चों का वध हुआ, और हमको अपने बेटे को आपको यहां से भेजना पड़ा गोकुल में, और फिर यहां हम रहे जब तक कृष्ण नहीं आए, कितने दिन? कृष्ण के जन्म के बाद में 10 वर्ष तक कम से कम नहीं आए, 10 वर्ष के बाद में तब यहां आए, 11-12 वर्ष, और तब फिर कंस को मारा। इतने दिन तक कंस क्या करता रहा? गाली गलौज, माता भी पीटता और उनके छाती का पत्थर रखता, बहुत कष्ट दिया। तो प्रभु हमने ऐसा कौन सा पाप किया बतला सकते हैं? क्यों नहीं हमारी शुद्धि ली? और आप जगत के अभी करता है, अभी देखना कंस को मारा, अब मारा, अब हमारे दुख दूर करने के लिए हमारी बेड़ी हाथ पकड़ी हो, आप जरूर प्रभु हैं, किंतु आपकी हम महिमा को हम नहीं समझ सकते हैं। ये क्यों ऐसा कराया? अब देखिए, भविष्य में कोई भी आपका भजन नहीं करेगा। क्यों? जो भजन करता है वही कष्ट में। इतना दिन आपसे बातचीत किया, घर धारण किया, सब कुछ किया भक्ति की, और जिसका ये परिणाम हमको ये भोगना पड़ा कि आपने इतना कष्ट हमको 11 वर्ष तक इतना कष्ट हमको कौन से ने दिया? पहले क्यों नहीं आ गए? आप क्या नहीं कर सकते? इस तरह से कहने वाले थे, किंतु कृष्ण ने और बलदेव ने क्या सोचा? उनका अवतार ही है प्रेम, प्रेम से लोगों का कष्ट हरण करता है, इसलिए उनका नाम है हरि। जितने भी हमारे पाप हैं, कर्म हैं, ये सबको हरण कर लेते हैं, और चित्त निर्मल होने पर हृदय को भी हरण कर लेते हैं। ऐसा हरण करने फिर दूसरी जगह मन नहीं लगता। हमारे साथ में जो बच्चे हैं, ये घर क्यों नहीं जाते? यहाँ पर मथुरापुरी में किस लिए बैठे हैं? घर घर में पीछा जाते हैं, इसलिए कुछ है ना भगवान के नाम में, कुछ है जिसको छोड़कर के हम भी यहीं पर बैठे हैं, माधुपुरी के माधुपुरी करके किसी प्रकार से जीवन करते हैं। और विदेशी ये सब पागल जैसे बने हुए यहाँ पर, क्यों? हरा हरा की मना कृष्णा कुछ अपनी अद्भुत चीजों को दिखला करके निर्मल चित्त को हरण भी कर लेते हैं अपने आप, जिसे और कहीं मन ही नहीं लगे। आप लोग भी जो सुन रहे हैं, कुछ दिनों तक हम लोगों की बातें सुनेंगे, आप लोगों को भी घर गृहस्थी कुछ अच्छी नहीं लगेगी, जरूर ये निश्चित है। हम तो इसकी परीक्षा करके देखा है। जैसे हमारा अपना तो है ही है, और विश्व में जहां जहां गया, नास्तिक देशों में, बड़े समृद्ध राष्ट्रों में एक एक धनी आदमी को देखा, करोड़पति, लखपति नहीं, करोड़पति। जो हमसे ये कहते हैं कि महाराज जी आपको कितना करोड़ रुपया चाहिए, उनको जो इसके लिए आया हम, तुम लोग को सुखी करने के लिए आया, ये सब तुम्हारे पास में रखो, हमको इसकी जरूरत है। तुम हमारी बातों को सुन करके ऐसा कर, और सुनते हैं सचमुच उनका हृदय बदल, नहीं तो लाखों लोग हमारे पास में आए और जब विदेशों में जाते हैं कितना आदर करते हैं, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम जो कुछ कहते हैं उठते बैठते हैं, क्यों? ये कृष्णा में कुछ ऐसी शक्ति। अरे सुनो बेटी, तुम उधर लग, उधर क्या कर, एकदम सब छोड़ करके हमारी बात, क्यों? कुछ बातें हैं कृष्ण, इसलिए हर इन्हीं का, इसीलिए उनका नाम है हरि। और हरते भी है कैसे? अपनी शक्ति से, राधनी शक्ति, श्रीमती राधिका के योग से। इसलिए सब संकटों को हरण करने वाली ये श्रीमती राधिका, परिणाम में एक ऐसी शक्ति है कि ये सारे क्लेश संसार के दूर हो जाए। तो वही उनसे पूछ रहे हैं कृष्ण से, और कृष्ण देख रहे हैं कैसे राजीव लोचन, अमल लोचन। कृष्ण कैसे हैं? बड़ी सुंदर सुकुमार, ऐसे वो किशोर अवस्था में और वहां पर आए हैं उन दोनों के सामने, उनका हाथ बेड़ी बेड़ी खोल करके और बड़े प्रेम से अबोध बच्चे जैसे, हे पिताजी हे मैया, उनको संबोधन किया। किंतु वसुदेव और दो, हे तात मैंने पिता, हे मैया, हे माता जी, जब ऐसे प्यार से उनको संबोधन किया, उसी के माध्यम से जोग माया के माध्यम से उनके ज्ञान को ढक दिया, जो मैं भगवान हूं। जोग माया के प्रभाव, उनकी दो प्रकार की माया होती है, एक होती है विमुख मोहिनी माया और एक होती है उन्मुख मोहिनी माया। विमुख मोहिनी माया जो भगवान से विमुख है, भोगों में लिप्त हैं, जिनको आत्मज्ञान एकदम नहीं है, जो आत्मज्ञान लाभ ही नहीं करना चाहता, एकदम उसमें रचित है, उसे बहुत दूर रहते हैं, जो आत्मज्ञान देने वाले हैं उन पर भी द्वेष करते हैं, वेदों का विरुद्ध आचरण करते हैं, भागवत इत्यादि सुनना ही नहीं चाहते, एक ऐसे उनको अपनी माया से दुर्गा काली इत्यादि माओं से उनके बुद्धि को अच्छा, और जो उन्मुख हैं, जो भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान की भक्ति कुछ करते हैं, साधुओं का संग करते हैं, उनको योग माया से उनकी बुद्धि को अच्छा दिखा। इसलिए यदि नहीं करेंगे तो उनकी लीलाएं मधुर नहीं होंगी। ये वसुदेव जी मुक्त महापुरुष हैं, जसोदा जी, नंद जी, गोप ग्वाले, यहाँ की जो कुछ वृंदावन में है, ब्रज में, वो सभी मुक्त महापुरुष हैं। यदि कृष्ण को वो भगवान समझें और कृष्ण को भी ये याद है कि मैं भगवान हूं, तो उनको ऐसी प्रेममयी लीला इस जगत में हो नहीं सकती, और फिर किसी का कल्याण भी नहीं होगा। उन कथाओं को सुन करके किसी को रुचि नहीं होगी, इसलिए उनकी बुद्धि को अच्छा भी कर। वो भूल गए एक मैया कहने से बात कर, एक पुत्र, महापुत्र, महापद्मा, माता पिता की शत्रुता करने वाला, उनको दुख कष्ट देने वाला, कभी माता पिता के पास में पूछने वाला नहीं, किंतु कभी किसी कारण से वो भूल जाए सब कुछ, अभी मैया माँ को और बाप को प्रणाम करके कह दी मेरी मैया, हे पिताजी, सब कुछ भूल जाए। इसलिए कृष्ण ने उनको ता करके संबोधन किया, हे ता, इसलिए उनको इस तरह से हटा करके किधर, वो सब भूल गए, वो जो प्रश्न करना चाहते थे वो भी भूल गया, नहीं पूछ सके ये ऐसा क्यों। किंतु बात भी ऐसी, जो भगवान का भजन करता है, आजकल हम देखते हैं कि उनको कष्ट होता है, और जो भगवान का भजन नहीं करके दुराचार का आश्रय लेते हैं, इस जगत में भी खूब घूस लेते हैं, बदमाशी बेईमानी करते हैं, माता पिता के प्रति भी टॉर्चर करते हैं, सबसे अपने मित्र से भी दोहाचरण करते हैं, तो देखते कि बड़े धनवान, बड़े मालूम होता है ये सुख से, किंतु ऐसा मत समझो जो वो सुख से हैं, कभी वो सुखी नहीं, वो बड़े दुखी हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे एक शराबी, उसको बहुत दुख है, दुख को दूर करने के लिए, कुछ क्षण के लिए शराब खूब जोर से पी लिया, तो उसका दुख सब जितना था वो हट गया, मोमेंट्री कुछ समय के लिए वो अपने को भूल गया दुख को, किंतु सारे दुख जैसे तैसे ही है, बल्कि और शराब का जो नशा है और शराब का जो विष है उसके सेहत को और बिगाड़ देगा, और भी उसे ले डूबेगा। तो हम लोगों का भी ऐसा ही है। कृष्ण ने उनको माता पिता के संबोधन से उनके सारे दुखों को बताया, और फिर उनसे बड़े प्रेम से बोले, उनको समझाने लगे, उनसे तरह तरह की बातों में उनको उनके गोदी में बैठ गए और रोने लग गई उनकी मैया, और पिताजी की आंखों से आंसू से। ये संसार है, जो भगवान का भजन करता है वो क्यों दुखी है। इफ एनीवन इज सर्विंग कृष्ण इवन चैंटिंग रिमेम्बरिंग डूइंग ऑल दी सर्विसेज ऑफरिंग एवरीथिंग टू कृष्ण बट इवन इट सीम्स दैट दे आर नॉट है एंड दी पर्सन्स who are doing against all these things, not chanting, remembering, doing anything, but they think that they are happy, but really they are not happy, never. उसी समय में की बात है, इधर तो ये हुआ उनका बंधन खोला और उग्रसेन का भी बंधन खोला, और खोलने के बाद में उग्रसेन राज्य तिलक का सारी सामग्री अपने साथ में ले आए थे, ब्राह्मणों को भी लेकर के आए थे, जे कृष्ण का राज्याभिषेक कर दिया। कृष्ण ने कहा कि मुझे राज्याभिषेक की मेरी जरूरत नहीं, हमारे वंश में राज्य नहीं, राज्य किस लिए, जजाति थे उस वंश में जदु महाराज के पिता, उन्होंने अभी संपात किया गया तुम्हारे कुल में कोई भी राजा नहीं हो सकेगा। क्यों? जजाति जी उनको शुक्राचार्य की बेटी का विवाह हुआ था और कुछ ऐसे ही गड़बड़िया थी जिस प्रकार से उनको कुछ श्राप लगा था जजाति को, शुक्राचार्य ने दे दिया, तुम हमारी बेटी को धोखा देकर के दूसरी स्त्री से को तुमने रख लिया है और उसके भी बच्चे हो रहे हैं, हमारी बेटी को भी हो रहे हैं, हमारी बेटी बड़ी अप्रसन्न है, इसलिए जाओ तुम बूढ़ा हो जाओ। युवावस्था में वो बूढ़ा हो गया, अपने बेटों से कहा कि तुम अपना जौवन दे दो, हम अभी कुछ दिन संसार को भोग करके पीछे तुमको लौटा दो। जदु सबसे बड़े पुत्र थे, जदु से उसका युवावस्था मांगा तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जन्म भगवान का भजन करने के लिए है, हम इसको नहीं देंगे। दूसरे पुत्रों से पूछा तो दूसरों ने दे दिया और 10,000 वर्ष तक संसार का भोग करने पर भी उसकी संसार की स्प्रिया नहीं गई। कामों के उपभोग से काम दूर नहीं हो सकता, जैसे आग, आग में घी देने से आग बढ़ती जाती है वो कमेगी नहीं, उसी प्रकार से भोगों से भोगों को दूर नहीं किया जा और भी बढ़ती जाती है भोग की लिप्सा। अंत में 10,000 वर्ष के बाद में उनको कुछ ज्ञान हुआ तो उस समय में उन्होंने अभी संपात किया था जदु को, जब तुम्हारे कुल का कोई भी, तुम्हारे वंश में कोई भी राजा नहीं होगा, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जैसे उनके हिसाब से हमारे वंश में कोई राजा नहीं होगा और हम ना राज्य लेना चाहते, इसलिए गुरुसेन आपको हम दे रहे हैं, आप भोज वंश के राजा हैं। यद्यपि भोज वंश भी जदुवंश के अंतर्गत है तो भी तुम लोगों के लिए कोई बात नहीं है, तुम्हारे वंश में राजा होते आए हैं, इसलिए हम राजा नहीं होना चाहते हैं, उनको भी राजा दिया। इसके बाद में दूसरे दिन नंद बाबा बैठे थे, कहां वो बैठे थे, यमुना के किनारे जहां पर उनका गाड़ा वो रखा था और वहीं पर कृष्ण के लिए, बलदेव के लिए प्रतीक्षा कर रहे। उन्होंने सोचा ये अभी कंस को कृष्ण ने मारा, बच्चा है थक गया है, भूख भी लग गई है, इसलिए जदवंशी लोग कृष्ण को और बलदेव जी को ले जा रहे हैं, अभी थका हुआ है, खिलाएंगे पिलाएंगे आदर करेंगे और मुझे भी समय मिल जाएगा, मैं अभी इन लोगों की बच्चा भी भूखा है, रात में सोएगा सोए और हम अभी जाएंगे अपने वासस्थान पर, वहां पर हम विश्राम करेंगे और संध्या निक भी कर लेंगे, पूजा पाठ अपना कर लेंगे, फिर दूसरे दिन वो प्रतीक्षा करते रहे शाम तक, सवेर दूसरे दिन भी शाम को कृष्ण उनके निकट आए और बोलते देखा जी नंद बाबा बड़े दुखी कुछ चिंता कर रहे हैं, कृष्ण बलदेव उनके दाहिने और बाएं गोदी में बैठ गए। नंद बाबा जी रोते हुए उनसे पूछने लगे क्या तुम लोग ऐसा समझते हो कि हम वसुदेव के पुत्र हैं और वो लोग तुमको रखना चाहते हैं, तुम लोग यहां पर रहना चाहते हो, या तुम सचमुच में हमारे पुत्र हैं, हमारे साथ में चलना चाहते हो? नंद बाबा रोने लगे, कृष्ण बलदेव जी रोने लगे। बलदेव जी ने कहा पिताजी हमने सुना है और यहां के जितने भी हैं कल से कह रहे हैं कि तुम हमारे पुत्र हो, वसुदेव और देवकी, और सारे मथुरा के लोग कह रहे हैं कि तुम इनके पुत्र हो, किंतु ये हमारे पुत्र पिता नहीं, मैं इनका पुत्र हूं। क्यों? यद्यपि इनके गर्भ से औरस में निकला हूं, बात ठीक है, किंतु जो पिता माता जन्मने के साथ ही साथ में बेटे को घर से निकाल करके कहीं दूसरी जगह भेज दे, उसका परिवरिश न कर सके, पालन पोषण न कर सके, तो माता पिता कैसे रहा? यदि मैं मर गया होता, पिता ने घर से निकाला कहीं फेंक दिया होता और मैं मर गया होता तो क्या संबंध रहता? तो पिताजी ने और भैया ने हमको तो दोनों ने घर से बाहर कर दिया और मैं मुझको आपने आंख से की पुत्री से भी अधिक तरह से प्यार किया, घर में रखा अभी तक पालन पोषण किया। जो गर्भधारिणी माता और जन्म देने वाला पिता ही माता पिता नहीं है, कौन पिता है? जो पालन पोषण करता है वो भी पिता है, जो आचार्य है वो भी पिता है, गुरु भी पिता है, स्त्री का पति पिता भी, जिन्होंने अपनी बेटी को कन्यादान दिया वो भी पिता है, ससुर इस तरह से बहुत से पिता है। इसमें जिन्होंने प्रत्याग किया यद्यपि पिता है, पिता का तो काम किया नहीं, आपने हमारा धारण पोषण पालन पोषण शिक्षा जो कुछ किया है आप किया, इसलिए आपके बिना हम नहीं रह सकते, आप ही हमारे पिता है। विशेष करके कृष्ण को छोड़कर के मैं रह नहीं सकता, इधर मैं यहां नहीं रहूंगा। आप कृष्ण को लेकर के चले जाएंगे ब्रज में और हम इनके विरह में तड़पते यहां रहेंगे और वो ब्रज में सखाओं के साथ में खेलकर, ये मेरे लिए आसान है। यदि ब्रह्मा स्वयं आए और कहें कि तुम यहां पर रह जाओ मथुरा में, वसुदेव के पुत्र हो, ठीक है पुत्र हैं, किंतु पालन पोषण तो उन्होंने किया नहीं, इसलिए माता पिता आप ही लोग हैं, आपने और यशोदा में मैं आपको छोड़कर के और कृष्ण को छोड़कर के किसी भी हालत में ब्रह्मा जी के कहने पर भी यदि प्रीति भगवान में हो तो ऐसा भजन सभी लोग करते हैं, किंतु निष्ठा के साथ में जब तक भजन नहीं होगा तो वो संबंध के साथ, संबंध किसको कहते हैं? जिस तरह से लड़के की तो बात छोड़िए, लड़का बीमार हो जाता है अपना पुत्र, उसके लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, पत्नी यदि बीमार हो जाए तो उसके लिए भी लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, अपने घर को भी बेच सकते हैं, उधार लेकर के भी चिकित्सा कराएंगे। एक कुत्ता जो अपना है वो भी बीमार पड़ जाएगा तो उसके लिए हम कितना चिंता करके रुपया पैसा खर्च कर सकते हैं, किंतु दूसरे घर का कोई व्यक्ति हो, लड़का हो, दूसरे की स्त्री हो, जिससे हमारा संबंध नहीं है, थोड़ी सी सहानुभूति करेंगे, कुछ पैसे खर्च करेंगे, किंतु घर बार बेच करके उधार ले करके लाखों लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कृष्ण से भजन करने के लिए कृष्ण